अध्याय 12 लोक कल्याणकारी राज्य। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्युदय। साधारणतः लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण हेतु नहीं वरन संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। इस रूप में लोक कल्याणकारी राज्य का विचार नया नहीं है। भारत में प्राचीन काल से राम राज्य की जो धारणा प्रचलित रही वह एक ऐसे राज्य की प्रतीक है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से स्वागिंग चौतरफा विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि भारतीय राजनीतिक विचारों ने राजपद के दैवी उदय का प्रतिपादन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने नरेशों के कर्तव्यों की विस्तृत विवेचना की है और उनका मूल विचार है कि राजा के द्वारा सभी कार्य लोक कल्याण की दृष्टि से ही किए जाने चाहिए। महाभारत, पराशर की स्मृतियाँ तथा मार्कंडेय, मनु और याकलव्य आदि की विचारधारा में यह बात स्पष्ट देखी जा सकती है। उदाहरणतः वेदव्यास ने महाभारत में कहा है कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी विकास उन्नति का प्रयत्न नहीं करता वह नरक का भागी होता है। लगभग इसी प्रकार की धारणा यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित थी। प्लेटो और अरस्तु के द्वारा राज्य को एक नैतिक संगठन माना गया है जिसका उद्देश्य किसी एक वर्ग के हित में नहीं वरन सभी नागरिकों के हित में कार्य करना है। मध्ययुग में यद्यपि इस विचार के दर्शन नहीं होते, लेकिन 20वीं और 21वीं सदी में टॉम पेन, थॉमस जेफरसन, कॉन्ट, ग्रीन, बेंथम की विचारधारा में पुनः इस आदर्श को देखा जा सकता है कि राज्य अपने सभी सदस्यों के कल्याण में कार्य करे। इस प्रकार अपने मूल रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा सदैव ही विद्यमान रही है, लेकिन वर्तमान समय में जिस अर्थ विशेष में इस धारणा का प्रयोग किया जाता है वह वर्तमान परिस्थितियों की ही उपज है। इसे आधुनिक उपयोगीकरण की देन कहा जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय प्रमुख रूप से निम्न प्रवृत्तियों का परिणाम है। पहला, व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के आरंभ में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा व्यक्तिवादी यदभाव्यम नीति को अपना लिया गया और इस नीति के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया गया था। इस नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप यूरोप के राज्य अधिकाधिक संपत्तिशाली बन गए, लेकिन इसके साथ ही संपत्ति का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीयकरण होने लगा। एक और तो अत्यधिक संपत्तिशाली वर्ग उत्पन्न हो गया, लेकिन दूसरी ओर ऐसा श्रमिक वर्ग था जिसके पास अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने पर भी जीवन के साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक जनता में विद्यमान व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और रास्किन, कार्यालय एवं विलियम गॉडविन आदि विद्वानों द्वारा इस असंतोष की अभिव्यक्ति की गई। बुद्धिजीवियों की एक बड़े भाग द्वारा यह मांग की गई कि राज्य के द्वारा अपने बहुसंख्यक वर्ग की दूरदर्शा एक शांत दर्शक के रूप में देखने के बजाय इस स्थिति में सुधार करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा, मार्क्सवाद का उदय और पूंजीवाद राज्यों पर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्तिवादी व्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से ही 1838 में कार्ल मार्क्स और एंजेलस ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण करते हुए ही सोवियत रूस में सर्वहारा वर्ग द्वारा एक सफल क्रांति की गई और तमाम आंतरिक एवं बाहरी विरोधों के बावजूद सोवियत रूस में सुव्यवस्थित रूप से साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। यह साम्यवादी व्यवस्था निश्चित रूप से पाश्चात्य देशों में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध और उनके लिए भय का एक कारण थी। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी देशों ने अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करना आरंभ किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ मौलिक परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सर्जन हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया। तीसरा, विकासवादी समाजवाद का आरंभ। 19वीं और 20वीं सदी में समाजवाद के एक अन्य रूप विकासवादी समाजवाद का प्रभाव भी बढ़ने लगा। इस विचारधारा का उद्देश्य क्रांति और हिंसात्मक मार्ग से दूर रहते हुए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों तथा शिक्षा के माध्यम से समाजवादी विचारों का प्रसार करके देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी ढंग से संचालित करना था। विकासवादी समाजवाद के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य के द्वारा समाज के निमंत्र वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य इस प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम था। चौथा, मताधिकार का विस्तार और लोकतंत्र का विकास। 20वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन आदि लोकतंत्रीय राज्यों में सीमित मताधिकार की ही व्यवस्था थी, अतः राज्य के द्वारा निम्न वर्गों के हितों की उपेक्षा की जा रही थी। लेकिन इसके बाद सुधार कानून से ब्रिटेन में मताधिकार का विस्तार होने लगा और 20वीं सदी में भारत आदि राज्यों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया। अब इन राज्यों के लिए अपने बहुसंख्यक मतदाताओं की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी हो गया। निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक करना आवश्यक था, अतः लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी सोचा जाने लगा कि प्रजातंत्र का अर्थ केवल मतदान का अधिकार नहीं है, वरन जनता को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अनेक सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन को सुखपूर्ण, सम्मानित तथा नैतिक रूप से श्रेष्ठतर बनाना है। प्रजातंत्र को वास्तविकता प्रदान करने के लिए लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपनाना आवश्यक था और ऐसा ही किया गया। उपयुक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप आज विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा लोक कल्याण की धारणा को अपना लिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा अपने वर्तमान रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख रूप से इस परिपार परिभाषाएं दी जा सकती हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है, अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। TB W Kent के अनुसार लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना है। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोकहितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। उपयुक्त सभी परिभाषाओं में लोक कल्याण के आर्थिक पक्ष का अधिक बल दिया गया है, परंतु लोक कल्याणकारी धारणा केवल भौतिकी नहीं वरन मानवीय स्वतंत्रता और प्रगति से भी संबंधित। मैसूर विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण में न्यायमूर्ति छागला ने लोक कल्याणकारी राज्य की सही धारणा को व्यक्त करते हुए कहा था, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण हो। लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिक द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाना है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार है। राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का अर्थ प्राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंधन लिया जाता है, लेकिन कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्यक्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे कोई बंधन ना लगे। राज्य के कार्यक्षेत्र के साथ ही साथ व्यक्ति का भी अपना स्वतंत्र कार्यक्षेत्र हो। वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पश्चिम प्रजातंत्र और साम्यवादी अधिनायक तंत्र दोनों से ही भिन्न है। पश्चिम प्रजातंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता की एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसके अंतर्गत नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित साम्यवादी अधिनायक तंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव होता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच सामंजस्य का एक सफल प्रयत्न है। होबमैन के शब्दों में यह दो अतिथियों के एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवादी है और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद। लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित होता है और इस संबंध में लोकहित से हमारा तात्पर्य राजनीति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को अवसर की अवमानना को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी एक समुदाय या वर्ग विशेष के हितों की साधना ना होकर जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। लोक कल्याणकारी राज्य की उपयुक्त धारणा को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार के राज्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लक्षण बताए जा सकते हैं। पहला, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। हमारा अब तक का अनुभव स्पष्ट करता है कि शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने और जनसाधारण के हित में उसका प्रयोग करने के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। जल कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में आर्थिक सुरक्षा का तात्पर्य निम्नलिखित दो बातों से लिया जा सकता है। का सभी व्यक्तियों को रोजगार, ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें कार्य नहीं प्रदान कर सकता, उनके जीवन यापन के लिए राज्य द्वारा बेरोजगार बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए। ख, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, एक व्यक्ति को अपने कार्य के बदले में इतना पारिश्रमिक अवश्य ही मिलना चाहिए कि उसके द्वारा न्यूनतम आर्थिक स्तर की प्राप्ति की जा सके। न्यूनतम जीवन स्तर के संबंध में अर्थशास्त्री क्राउथर ने कहा है कि नागरिकों के लिए अधिकार रूप में उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। निवास, वस्त्र आदि के न्यूनतम जीवन स्तर को और से उन्हें चिंता रहित रहना चाहिए। शिक्षा का उन्हें पूर्णतः सम्मान अवसर प्राप्त होना चाहिए और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था के दुख से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य में इसी एक के लिए अधिकता के पूर्व सबके लिए पर्याप्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग, अधिकतम समानता की स्थापना। संपत्ति और आय की पूर्ण समानता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय, तथापि आर्थिक न्यूनतम के पश्चात होने वाली व्यक्ति की आय का उसके समाज सेवा संबंधी कार्य से उचित अनुपात होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो स्थापित की ही जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण ना कर सके। दूसरा, राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य की दूसरी विशेषता राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो और वे अपने विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। क, लोकतंत्रीय शासन राजतंत्र अधिनायक तंत्र कुलीन तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकता। वस्तुतः इन शासन व्यवस्थाओं में कोई राजनीतिक अधिकार ही नहीं होते। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक हितों की साधना को भी आर्थिक हितों की साधना के समान ही समझा जाता है। अतः एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ख, राजनीतिक स्वतंत्रताएं। संविधान द्वारा लोकतंत्रीय शासन की स्थापना कर देने से ही राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए, अर्थात नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठनों की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो सकती और लोकहित की साधना के बिना लोक कल्याणकारी राज्य आत्मा के बिना शरीर के समान होगा। सोवियत रूस साम्यवादी राज्यों में नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं और परिणामतः राजनीतिक सुरक्षा का अभाव होने के कारण उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है और इस सामाजिक समानता की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग और संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों का अंत करके व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से महत्व प्रदान किया जाए। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में सामाजिक समानता का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः लोक कल्याणकारी राज्य में जीवन के सभी पक्षों पर समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। चौथा, राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी जनहित कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट या कम नहीं होती। इसके द्वारा न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्थावरण जैसा कि हॉबसन ने कहा है, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी के एजेंट, मकान बनाने वाले, रेलवे नियंत्रक तथा अन्य सैकड़ों रूपों में कार्य किया जाना चाहिए। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। इन सब के अतिरिक्त एक लोक कल्याणकारी राज्य एक राज्य विशेष के हितों से ही संबंध न रख कर संपूर्ण मानवता के हितों से संबंध रखता है और इसका स्वरूप राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय होता है। वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना के विकास ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे से इतना निकट ला दिया है कि त्रस्त मानवता के बीच एक अकेला राज्य अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं कर सकता। एक लोक कल्याणकारी राज्य तो वसुवध कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है के विचार पर आधारित होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। परंपरागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित करने की रही है और यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राज्य के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही किए जाने जरूरी हैं, किंतु ऐसे कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनका किया जाना तत्कालीन समय की विशेष परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणाम स्वरूप अनिवार्य और ऐसी कार्यों की यह समय सीमा समाप्त हो गई है। अब यह माना जाने लगा है कि परंपरागत रूप में ऐसी कहे जाने वाले कार्य भी राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्यों की विवेचना निम्न रूप से की जा सकती है। पहला, आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा। एक राज्य तब जब तक विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा करने में क्षमता नहीं रखता और आंतरिक शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने के जीवन की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं। इस कार्य को संपन्न करने के लिए राज्य सेना और पुलिस रखता है, सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायालय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर लगाया जाता है। दूसरा, व्यक्तियों के पारंपरिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था। मानव के स्वार्थी होने और उनकी पृथक पृथक विचारशीलता होने के कारण उनके विचारों और कार्यों में भेद होता है तथा किन्हीं प्रतिबंधों के अभावों में विचारों और कार्यों का यह भेद संघर्ष का रूप ग्रहण कर सकता है। अतः राज्य के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता एवं पुलिस और न्यायालयों की सहायता से उन्हें कार्य रूप में परिणित करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों को नियमित करना भी आवश्यक हो गया है और यह भी कार्य राज्य के द्वारा ही किया जाता है। यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस कार्य को भलीभांति संपन्न करने पर ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं राज्य की सत्ता निर्भर करती है। तीसरा, कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे राज्य के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो। अतः इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि उद्योग तथा व्यापार के नियमन एवं विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इसमें मुद्रा निर्माण, प्रमाणिक माप और तौल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकोषीय सहायता, नहरों का निर्माण, बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना और कृषि सुधार इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। राज्य के द्वारा जंगल आदि प्राकृतिक साधनों और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कृषि तथा उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। चौथा, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक सुरक्षा संबंधी होता है। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत अनेक बातें सम्मिलित हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को रोजगार और अधिकतम समानता की स्थापना प्रमुख है। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है या राज्य जिन्हें कार्य नहीं प्रदान कर सका, उनके लिए राज्य द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा यद्यपि आय की पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो स्थापित की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण ना कर सके। पांचवा, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं अवश्य ही प्राप्त हों। इसके साथ ही राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को उत्तरोत्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। छवां, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सुविधाओं की व्यवस्था करना है जो उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु सहायक और आवश्यक है। इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार का राज्य शिक्षण संबंधी संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क किया जाता है। औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार चिकित्सा गृहों तथा प्रसव गृहों आदि की स्थापना की जाती है, जिनका प्रयोग जनसाधारण निःशुल्क कर सकते हैं। छवां, सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा परिवहन, संचार साधन, रेडियो, सिंचाई के साधन, बैंक, विद्युत, कृषि के वैज्ञानिक साधनों आदि की व्यवस्था से संबंधित सार्वजनिक सुविधा के कार्य भी किए जाते हैं। यद्यपि इन सुविधाओं के लिए राज्य द्वारा शुल्क प्राप्त किया जाता है, किंतु इन सुविधाओं का महत्व इस दृष्टि से भी कि व्यक्ति अपने हितों के लिए इन साधनों की व्यवस्था नहीं कर सकता, साधन संपन्न राज्य ही ऐसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं के लिए राज्य के द्वारा उचित शुल्क ही प्राप्त किया जाता है और जो कुछ लाभ होता है वह सार्वजनिक कोष में जाता है तथा उसका उपयोग भी स्वाभाविक रूप से आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। छवां, समाज सुधार। लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का न केवल आर्थिक वरन सामाजिक कल्याण भी होता है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा मद्यपान, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि पर परंपरागत सामाजिक कुरीतियों का दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। सातवां, आमोद प्रमोद की सुविधाएं। जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्यानों, क्रीड़ा क्षेत्रों, सार्वजनिक तरणतालों, सिनेमा गृहों, रंगमंच और रेडियो आदि का प्रबंध करना चाहिए। नौवां, नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संगठन आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक आदर्श की व्यवहारिक प्राप्ति संभव हो सके। दसवां, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य। लोक कल्याणकार राज्य का आदर्श किसी एक राज्य विशेष से नहीं वरन समस्त मानवता के संबंध रखता है। अतः एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत युद्ध का नहीं वरन अधिकाधिक राज्यों के साथ सद्भावना और सहयोग का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। अपने अस्तित्व और सीमाओं का सम्मान की रक्षा के लिए
उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु राजनीतिक या आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति होती उसके द्वारा अन्य किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पर लोक कल्याणकारी राज्य के कुछ कर्तव्य गिनाए गए हैं, किंतु लोक कल्याणकारी राज्य के समस्त कर्तव्यों की सूची तैयार कर सकना संभव नहीं। व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप कहाँ से आरंभ और कहाँ पर समाप्त हो, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर स्थानीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में ही दिया जा सकता है। आज की जटिल परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति केवल अपने लिए या अपने ही प्रयास में जीवित नहीं रह सकता, और समाज द्वारा जनहितकारी कार्यों का संपादन अच्छे जीवन की एक आवश्यकता बन गई है। अतः राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को वे समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो उनके सामूहिक कल्याण की वृद्धि करने वाली हो। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन। यद्यपि लोक कल्याण वर्तमान समय की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रवृत्ति है, फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध कुछ तर्क दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का हनन। व्यक्तिवादियों का कहना है कि लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेने पर जब राज्य के कुछ कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो स्वभावतः राज्य की शक्तियों में भी वृद्धि होती है, और यह अति शक्तिशाली राज्य व्यक्तित्व स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। अमेरिकी राज्य सचिव बायर्नेस ने इसी आधार पर इसे विकराल सरकार की झलक पाई थी। दूसरा, ऐच्छिक समुदायों का आघात। जब लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो राज्य अनेक ऐसे कार्य करने लगता है जो वर्तमान समय में ऐच्छिक समुदायों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य ऐच्छिक समुदायों के लिए घातक होता है, और मानव जीवन के संबंध में उपयोगी भूमिका निभाने वाले ये ऐच्छिक समुदाय समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, नौकरशाही का भय। लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य नौकरशाही में भी बहुत अधिक वृद्धि होगी, और नौकरशाही में यह अत्यधिक लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार आदि अन्य बुराइयों को जन्म देगी। चौथा, अत्यधिक खर्चीला। लोक कल्याणकारी राज्य बहुत अधिक खर्चीला आदर्श है, क्योंकि राज्य के विभिन्न कल्याणकारी सेवाएं संपादित करने में बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। सामान्य आर्थिक साधनों वाला राज्य इस प्रकार का व्यवहार वहन नहीं कर सकता। सेनेटर टॉफ ने इसी कारण कहा है कि लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जाएगी। लोक कल्याणकारी राज्य के जो उपयुक्त दोष बतलाए जाते हैं उनके कारण लोक कल्याणकारी राज्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में ये दोष लोक कल्याणकारी राज्य के नहीं वरन मानवीय जीवन की दुर्बलताओं के हैं। सर्वप्रथम लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारवादी राज्य में आधारभूत अंतर है, और लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर अधिकार नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य में न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र बचा रहता है, वरन यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को वास्तविक रूप प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कारण ऐच्छिक समुदायों के कार्य क्षेत्र पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, इससे उनके कार्य और महत्व में वृद्धि होती है, कमी नहीं। जहाँ तक नौकरशाही और बुराइयों का संबंध है तो ये दोषपूर्ण राज्य व्यवस्था और मानवीय चरित्र की दुर्बलता के परिणाम हैं, और इनमें सुधार कर इन्हें दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया है कि लोक कल्याण की प्रवृत्ति तत्काल तो राजकोष से भारी व्यय का कारण होती है, लेकिन लंबे समय में इसका नागरिकों की कार्यकुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय तेजी के साथ बढ़ती है। व्यवहार में लोक कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति को विश्व के लगभग सभी राज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में अपना लिया गया है और इसे अपनाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी नहीं बचता। भारत में लोक कल्याण की परंपरा बहुत प्राचीन है और वह अपनी इस प्राचीन परंपरा के अनुसार भारतीय संविधान निर्माता लोक कल्याणकारी राज्य के विचार से प्रेरित थे। लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य से जिन कार्यों को करने की आशा की जाती है, उन कार्यों को करने के लिए बहुत अधिक आर्थिक शक्ति और साधनों की आवश्यकता होती है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत का एक लंबे समय तक शोषण किए जाने के कारण स्वतंत्र भारत की सरकार के पास इतने साधन नहीं थे कि राज्य इस प्रकार के सभी जनहितकारी कार्यों को संपन्न कर सकता है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ही इस बात की घोषणा की गई कि हमारा उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है। पहला, राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीवन का पर्याप्त साधन प्राप्त हो, राष्ट्रीय धन का स्वामित्व और वितरण सबके हित में हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, बालकों का शोषण न किया जाए। दूसरा, राज्य अपने आर्थिक साधनों की सीमा में काम दिलाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता देने की व्यवस्था करेगा। तीसरा, राज्य काम करने की दशाओं में सुधार करे और स्त्रियों के लिए प्रसूति की सहायता का प्रबंध करे। चौथा, राज्य नागरिक के स्वास्थ्य को सुधारे तथा उनके आहार, पुष्टिफल, तल और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। उपयुक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के कुछ कदम उठाए। भारत के शासक दल राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आबारी अधिवेशन में समाजवादी ढंग के समाज की व्यवस्था का लक्ष्य घोषित किया जा चुका है। कल्याणकारी राज्य को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही नियोजन का सहारा लिया। अब तक समाप्त हुई 3 पंचवर्षीय योजनाओं और वर्तमान समय में चल रही 4थी पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के अतिरिक्त लोक कल्याण के लिए अनेक सेवाओं के विकास की योजनाएं स्वीकार की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और सभी राज्यों इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि शीघ्र से शीघ्र संपूर्ण जनता को आरंभिक शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा के विस्तार के साथ साथ युवक युवतियों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं चल रही हैं। शिक्षा की तरह भी राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भूमि सुधार, जमींदार आंदोलन, चकबंदी, सहकारी खेती, ग्राम उद्योग और रोजगार संबंधी कानून बने हैं और योजनाएं चालू हैं। गरीब गांवों का देश है, अतः गांवों के बहुमुखी विकास के लिए सामुदायिक योजनाएं और राष्ट्रीय विकास खंड की योजना इस प्रकार से विस्तृत की गई है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी ग्रामीण क्षेत्र इनके अंतर आ गए हैं। मजदूरों के कल्याण हेतु अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है और अब बड़े उद्योगों और औद्योगिक नगरों में श्रमिकों के लिए कल्याणकारी अधिकार नियुक्त किए जाते हैं। मजदूरों के लिए जीवन बीमा योजना और प्रोविडेंसी फंड अथवा बोनस देने की योजना लागू की गई है जिससे लाखों मजदूरों का लाभ होगा। भारत सरकार के वार्षिक बजट में उद्योग कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की जो योजना प्रस्तुत की गई है वह लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मृत व्यक्ति की संपत्ति पर कर, संपत्ति कर, व्यय कर और उत्तरोत्तर कर बढ़ती हुई दरों के आयकर के माध्यम से आर्थिक विषमता को कम करने के प्रयत्न कर रहे हैं। मार्च में भारतीय लोकसभा जो पांचवें आम चुनाव हुए उनमें बहुत अधिक बहुमत से विजयी राजनीतिक दल राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सबसे अधिक प्रमुख रूप से गरीबी बेकारी और सामाजिक असमानता को समाप्त करने का नारा लगाया गया था। दूसरे शब्दों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का ही संकल्प था। इस दिशा में कुछ प्रयत्न भी किए गए यथा राजाओं के परिवर्ष की समाप्ति संपत्ति के मौलिक अधिकार में संशोधन जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण और शहरी संपत्ति का सीमाकरण किया गया लेकिन इन कार्यों का व्यवहारिक स्थिति पर अभी तक कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। धनी और निर्धन का भेद लगभग वैसे ही है विषम रूप में बना हुआ और गरीबी हटने के कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में सैद्धांतिक धारणाओं की अपेक्षा कुछ ठोस व्यवहारिक कदम उठाए जाएं। यद्यपि वर्तमान समय तक भारत में पूर्ण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव नहीं हो सकी किन लेकिन इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और इस बात की आशा की जा सकती है कि समय की गति के साथ साथ इस दिशा की बढ़ने के हमारे प्रयत्नों में तीव्रता और गति आएगी जिसकी नितांत आवश्यकता भी है।